अनंत करे वैष्णवृंद की जय श्री रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल भक्त दस रघुनाथ सतगुरु की शिवदास ठाकुर की प्रेम से प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीधर गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपुर राधा कुंडी गोदान की श्री वृंदावन धाम की श्री गुरु धाम की श्री मायपुन धाम की श्री जगन्धाम की तुलसी महारानी भक्ति देवी की गंगा यमुनी देवी की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री गोनिता की श्री कृष्ण बलराम की श्री राधा श्याम सुंदर की गौर प्रेमानंदे समवेद भक्त वृंद की All glories to the Son of God. All glories to the Son of God. All glories to Sri Guru and Sri Guru and all glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
श्लोकेर्भवती
नैष्टिकी कुछ हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं, चौथा स्कंध अध्याय 17 श्लोक 35। आपां उपस्ते मयि नवे अवस्थिता प्रजा भवान् आद्या रिरक्षिषो किल सा वीरमूर्ते समभूत् धरतरा या मां सयसे उग्रशरा जघांससे अपामुपस्ते मैना व्यवस्थिता प्रजा भवनादरि रक्षिषु किल सदीरमूर्ति समभुक्तरधार युमां क्रशरो जिघंससे अमा अपामुपस्ते मैना व्यवस्थितः प्रजा भवनादरि रक्षिषु किल सदीरमूर्ति समभुद्धरादरो यो मां पयसु कृशदो जिघंससि अपामुपस्ते मयि न व्यवस्थितः प्रजा भवनाद्यरि रक्षिषु किल सदीरमूर्ति समभुक्तरादरो मां पयसु कृशदो जिघंससि जब रिरक्षिषो रक्षकाने के इच्छुक केला निसंदेह सा वो वीर मूर्ति परम वीर के रूप में समभूत हो गया धार धारम पृथ्वीलोक का रक्षक या जो माम मुझको वैसे दूध के लिए उग्रशाला ठीक के वानों से जिगम ससे मारना चाहते हो। अनुवाद तत्पर्य श्री ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया जिससे आपका नाम धाराधार अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा, तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में अपने ठीक के बाणों से मुझे मारने के लिए उद्यत है, क्योंकि मैं तो जाल की नाव के सदृश हूँ जो प्रत्येक वस्तु को तैराए जा रखती है। तत्पर्य भगवान दारा दारा कहलाता है जिसका अर्थ है वो जो वराह अवतार के रूप में पृथ्वी को अपना दारों पर रखते हैं। इस प्रकार पृथ्वी भगवान के विरोधाभासी कार्य की बात बता रही है। यद्यपि भगवान ने एक बार पृथ्वी की रक्षा की थी किंतु आप वे पृथ्वी रूपी नाव को उलटना चाह रहा है। भगवान की गतिविधि को कोई नहीं समझ पाता। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य को भगवान की गतिविधियों विरोधाभासी जान पड़ती है। तो ये छोटा सा तात्पर्य है और दूसरे तात्पर्य संलग्न है, इसलिए मैं दूसरे श्लोक तात्पर्य में नूनम जनरेतमशीश्वरास्मदुणसर्गमाया न ज्ञायते मोहितचित्तत्वाभिस्तेजो नमो वीरयशस्करेभ्यः। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के क्रियाकलाप समाज के परे हैं तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। तत्पर्य भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के क्रियाकलाप असामान्य तथा आश्चर्यजनक होता है। बेचारा शूद्र मानव इन कार्यकलापों के उद्देश्य तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है। तथा श्रीजीव गोस्वामी ने कहा कि जब तक भगवान के कार्य को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता उनकी व्याख्या असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में नित्य स्थित है। उसके साथ ही साथ उन्होंने उनके रूप में अपना विस्तार कर रखा है, यथा राम नृसिंह वराह तथा संकर्षण के अन्य प्रत्यक्ष अवतार। संकर्षण बलदेव की विस्तार है और बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्रकृत्य है, इसलिए ये सभी अवतार कला कहलाता है। ईश्वरम शब्द सभी ईश्वरों का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहित में कहा गया है रमादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है कि समस्त अवतार भगवान के आंशिक विस्तार अर्थात कला है। श्री कृष्ण आदि भगवान है। ईश्वर नाम शब्द बहुवचन है, अतः इससे यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कोई ईश्वर है। वास्तव में ईश्वर तो एक है, किंतु वो अनेक रूप में अपना विस्तार करता है और अनेक प्रकार से कार्य करता है। कभी कभी सामान्य पुरुष इससे कि कर्तव्य भी मूर्ख हो जाता है और इन कार्य को विरोधाभासी मने लगता है, किंतु ये है नहीं। भगवान के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी रहती है। समझने के लिए कभी कभी यह कहा जाता है कि भगवान चोर के तथा गृहस्थ के भी हृदय में विद्यमान है, किंतु चोर के हृदय का परमात्मा कहता है जाओ और अमुक घर से वस्तु चुरा लाओ, किंतु उसी समय वो गृहस्थ से कहता है चोरों तथा सेंध लगाने वालों से होशियार रहो। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिए गए ये आदेश विरोधी प्रतीत होता है, किंतु हमें जान लेना चाहिए कि भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना है और हमें ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं मनाना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मन योग से भगवान में समर्पित हो जाए जाए और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांति पूर्वक रहा जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत महाराज पृथ्वी का पृथ्वी पर कुपित होना नमक 17वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानार्थ निरंतस्य ज्ञानं जलसदाधेय चक्षोरनिरतं जनं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमानोदयस्थं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपादरामयं ददाति सदरन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरुतापद्मवनं श्रीगुरुं वैष्णवश्च श्रीरूपं सहव्रजातं सहगणावदनतं वितन्तं सदैवं साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेहं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणालिता श्रीविशतंवितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगत्पते गोपे सर्वविघ्नहर्ता राधाकांत नमस्तुते। तत् कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे ब्रजवासिनी देवी प्रणामामि प्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु महेश्वरच वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव जन गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम यहाँ पर महाराज प्रीतु की कथा हो रहा है। जो भगवान के शक्ति वेश अवतार है और यहाँ पर पृथ्वी पर कुपित लगता है प्रीतु महाराज और जब पृथ्वी महाराज पृथ्वी के सामने पहुंचता है और तलवार निकालता है मारने के लिए, तो भयभीत होकर विनम्र भाव में उनसे कहता है, प्रयत्न कर रहा है बचाने के लिए और कहता है जैसे यहाँ पर, हे भगवान, क्योंकि पृथ्वी महाराज राजा के रूप में है लेकिन साधारण राजा नहीं है, भगवान के अवतार है, अलग अलग अवतार है शास्त्र में लिखा है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण है पूर्ण भगवान, स्वयं भगवान है, ये भी अवतरित होता है लेकिन मूल रूप है, इसके बाद उनके विस्तार रूप है। जैसे तत्पर्य में 36 श्लोक के तत्पर्य में कृष्ण के बारे में बताता है श्लोक प्रभुपाद, और श्लोक में भी लिखे है ईश्वर नाम, तो बहुत सारे भगवान के रूप है लेकिन फिर भी एक ही है भगवान, वो ये है स्वयं भगवान श्री कृष्ण मूल रूप है। जिसे परम संहिता में लिखा है प्रभुपाद भी श्लोक का चरण करता है, और ब्रह्म जी कहते हैं पहले श्लोक में ब्रह्म संहिता के इस अध्याय के ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नाद्य राधे गोविंद सर्व करण करण, बहुत सारे ईश्वर है लेकिन परम ईश्वर है एक ही है, मूल रूप है भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध में भी तीसरे अध्याय में श्लोक 43 ये परिभाषित सूत्र है, तो इसमें इंगित है कि श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है बात है। एते चंसाकरा पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वराम इंद्रियार व्याकुलम भोगां निर्ज्ञान्ते युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होता हो जाता है ब्रह्म जी के एक दिन में, हर युग में उनके दूसरे विस्तार रूप भी अवतरित होता है, तो वो रूप कृष्ण है और दूसरे उनके कला है के विस्तार रूप है। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के है, जैसे बलराम ये पहले प्रकृति है और ये कृष्ण से बिना है। प्रभुपाद कहते थे सिर्फ एक फर्क है कृष्ण में और बलराम में, ये क्या है कौन बता सकता है क्या फर्क है? कृष्ण काला है और बलराम गोरे है, यही फर्क है, दूसरे कोई फर्क नहीं।
तो लेकिन फिर भी बलराम भी बलराम तो ये भी सोचता है कृष्ण भगवान है,
हरे कृष्णा कृष्ण भगवान है मैं सेवक हूं, ये भी भाव है। एकलेश्वर कृष्ण अव सर्वृत्या, सिर्फ कृष्ण ईश्वर है वो सब उनके वृत्त सेवक है। बलराम भी ऐसे सोचता है मुझे कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो इसके बाद द्वितीय उनके रूप है द्वारका में वसुदेव शंकर श्याम विस्तार रूप है उनके, और इसके बाद वैकुंठ लोक में अलग अलग विष्णु मूर्ति है, और इसके बाद भौतिक जगत जब प्रकट हो जाता है ये तीन पुरुष अवतार है महाविष्णु करुणदक्षय विष्णु गरुड़दक्षय विष्णु और क्षीरदक्षय विष्णु, जो परमात्मा है सबके बीच में विराजमान है। और उनसे क्षीरदक्षय विष्णु या अलग अलग दूसरे अवतार प्रकट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर प्रीतम राज अवतार है और शक्ति भगवान से तो मिलता है इसलिए कहा जाता है शक्ति वेश अवतार, और राजा के रूप में है और राजा भी भगवान के प्रतिनिधि है वास्तव में। अगर भगवान भी ना हो, अगर जीवात्मा है और अगर भगवान को मानता है भगवान के अनुसार सब कुछ कर रहा है तो भगवान के प्रतिनिधि माने जाता है। जैसे गुरु ये सर्वश्रेष्ठ है शुद्ध वैष्णव गुरु जान जो है जो जो दीक्षा देता है शिक्षा देता है ये भगवान के प्रतिनिधि है, लेकिन वैसे ही राजा अगर भक्त है भगवान को मानता है और वैष्णव के गुरु के आदेश अनुसार सब कुछ कर रहा है ये भी भगवान के प्रतिनिधि है। और इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये प्रवक्ता ये और भगवतम ने जैसे यहाँ पर पृथ्वी देवी कहती है हे भगवान पृथ्वी महाराज, जैसे शिव जी और नरद मुनि भी श्रीमद् भागवतम में भी उल्लेख है और इनके बारे में भगवान नरद उभाचा या भगवान शिव या इंद्र भी जो देवता है तो उनके पास भगवान की शक्ति है और ये तो समझ सकती है पृथ्वी देवी, इसलिए कहती है भगवान। और आपको तो जैसे पृथ्वी का दर्शन आपने एक बार किया है जब नीचे गिर गया, जब हिरण्यक्ष लड़ाई करते थे और तो उसी समय नीचे गिर गए पृथ्वी, तो उस समय वरारूप में अवतरित हुए भगवान और पृथ्वी देवी का उदाहरण किए थे, नीचे से लेकर अपना स्थान में फिर से रख दिया था उन भगवान वराहदेव। और यहाँ पर तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की गतिविधियां जैसे यहाँ पर भी, तो मान ने पृथ्वी देवी मानने के लिए तैयार था, तो ये आश्चर्य अचानक है, ये तो ऐसा लगता है कि विरोधाभासी चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा एक कारण है। लेकिन ये समझना भगवान क्यों ऐसे करते, कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है। जैसे हम अलग अलग लीला में देख सकते हैं, रामचंद्र के लीला में, कृष्ण के लीला जैसे ब्रज में या और द्वारका में और बाद में तो हस्तिनापुर में युद्ध के समय, ये उनके भक्त थे ये पंच पांडव, और ये योग्य थे जैसे युधिष्ठिर महाराज योग्य था ये पूरा दुनिया का देखभाल करना, राजा करना में तो निपुण थे और योग्य थे, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त थे और सब कृष्ण के अनुसार करते थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन तो के कार्य से ये वनवास के लिए जाना था और भगवान के साथ थे, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हुआ, कोई सोच सकता है। भक्त है लेकिन फिर भी असमर्थ थे अपने चेष्टा में, बहुत साल के लिए कि ना 13 साल के लिए है वनवास था कि ना 13 साल, तो आश्चर्य की बात है। और जैसे रामचंद्र के लीला में भी कभी वनवास हुआ, भगवान ही है लेकिन राजा के रूप में है, तो ये सब तो समझना अत्यंत मुश्किल है। सिर्फ जब गुरु के सन्निध्य में है, जब उनसे भगवत के बारे में श्रवण करता है और जब भजन करता है, भजन भी करना है, अगर सिर्फ श्रवण करता है भगवत के बारे में लेकिन भजन नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, सेवा भाव नहीं है, तो ये समझना तो संभव नहीं है। और तो इसलिए हमको हमेशा विनम्र भाव में रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए आगे जाने के लिए भक्ति मार्ग में। और जो समस्या जो आ जाता है, जो स्वाभाविक है इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेश है, तो अलग अलग कारण से भी होता है। एक तो भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, इसके बाद जब इस भौतिक जगत में है तो जन्म मृत्यु जरा आदि ये तो स्वाभाविक है, जो जन्म लेता है तो उनको मरना भी है, शरीर छोड़ना है और वृद्धावस्था में भी पहुंचना है और बीमारियां भी आ जाती है और बहुत से समस्या आ जाता है और चले जाते भी है। लेकिन जैसे कृष्ण भी कहता है ना, प्रस्पष्ट कांति सुदुष्ट सुख दुख दहा भारत, हमको सब कुछ सहन करना चाहिए, विनम्र भाव में रहना चाहिए और समझना चाहिए कि समस्या आता है और चले जाता है फिर से, और आगे जाना है निष्ठा के साथ। और कभी कभी हम भी सोचते हैं क्यों हो रहा है, और जैसे हमारे समाज में भी, हमारे आंदोलन में भी, तो भक्त के बीच में भी तो समस्या तो भी है, और कभी कभी सोचता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कहता है तो अंत में इस तात्पर्य में कि तो सबके दिल में है परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण, और चोर को प्रेरणा भी देता है वहां पर उसके गृहस्थ के पास जाओ और चोरी करो, और गृहस्थ के दिल में भी है और कभी बताता है सावधानी से रहना चाहिए। यहाँ पर जैसे ब्रज में भी तो चोर भी है, सबसे बड़े चोर भी है कृष्ण ही है। जय प्रसिद्ध नवदीप चोरम कृपांगनानाम चरुकुल चोरम अनेक जन्माज पाप चोरम चोरागम पुरुषम नमामि, सबसे बड़े चोर तो कृष्ण है। तो लेकिन फिर भी चोर है और चोर भी नहीं है, क्योंकि जो लेता है जैसे मक्खन दूसरे के गांव में जाता है, चले जाता है, चोरी करता है, लेकिन वास्तव में सब तो कृष्ण भक्त महेश्वर सब कृष्ण का ही है। जैसे ब्रज में तो हर भक्त के गांव में जा सकता है और पूछ सकता है, और कोई भी बोलता है आपके पास बहुत सुंदर घर है, तो भक्त क्या बोलते है, ये तो मेरे घर नहीं है, कृष्ण का ही घर है, गांव के सेवक है। तो सब गोपियां ऐसे सोचती है हमको कृष्ण के लिए तो मक्खन बनाती है, तो मक्खन तो चाय घर पे और तो बनाती है मक्खन, और वास्तव में कृष्ण के लिए भी नाम बनाती है, और उनकी इच्छा भी है कि कृष्णा मेरे घर पे आवे और ये मक्खन अगर लेता है मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और कृष्ण सब कुछ तो सबके दिल में है, समझता है, इसलिए वहां पर जाता है और मक्खन लेता है। तो कृष्णा सबके उद्गम है, सबके स्रोत है, आध्यात्मिक और बौद्धिक जगत उनसे आता है, तो हर कुछ कृष्ण का ही है। तो जो की चाय पे ले सकता है, एक चोरी है चोर चोरी करता है, चोर है चोर भी ना है वैसे ही। तो लेकिन ये है कि तो इसलिए तो आइए भौतिक जगत में तो स्वाभाविक है कि कोई है जो गलत काम कर रहा है तो चोरी करना तो वास्तव में अच्छा ना है, उचित ना है, लेकिन फिर भी है इस भौतिक जगत में बड़े चोर है, छोटे चोर है, और इसलिए सबके दिल में है और प्रेरणा देता है एक एक, एक दृष्टि से। लेकिन वास्तव में यह है तो प्रभुपाद ऐसा ये शास्त्र में भी ऐसा कहा जाता है कि प्रेरणा देता है, और ये भी कहावत है कि घास भी भगवान की कृपा से भगवान की कृपा के बिना नहीं ले सकता है, ऐसे करके नहीं हिल सकते, भगवान की पीछे के बिना कुछ नहीं होता है वास्तव में। लेकिन फिर भी भगवान उनकी इच्छा क्या है कि सब वापिस आ जाए आध्यात्मिक जगत में, और इसके लिए कुछ यहां पर अवतारित होता है मार्गदर्शन देने के लिए, और प्रतिनिधियों के जो गुरुजन को है जो है जो उनकी कृपा की मूर्ति है, तो उनकी सहायता से जीवात्मा आगे जा सकता है, ये भगवान की कृपा भी है, क्योंकि उनकी इच्छा है कि सब जो जीवात्मा जो है जो वास्तव में उनके कृष्ण की सेवक है, जीवेरे से उपहोय नित्य कृष्ण दास, हम सब कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस भौतिक जगत में गिर गया है स्वच्छ से, ऐसा ना है कि भगवान की इच्छा थी कि हमको यहाँ पर आना है, तो लेकिन भगवान की इच्छा है कि सब कि हम सब वापिस आध्यात्मिक जगत में चले जाए, इसलिए खुद आता है अवतरित होता है और मार्गदर्शन देता है, और उनके प्रतिनिधि यहाँ पर भेजता है, गुरुजन भेजता है, उनकी सहायता से हम आगे जा सकता है। तो ये उनकी वास्तविक ये इच्छा है, और इसलिए ये भी है कि चैत्य गुरु में परमात्मा के रूप में हमेशा जीवात्मा के साथ है और वस्तु में मार्गदर्शन देने के लिए है। लेकिन यह है कि बद जीव अच्छी तरह से नहीं सुन सकता है कि क्या कहना चाहता है परमात्मा, इसलिए गुरु के रूप में प्रकट हो जाता है। लेकिन भगवान दिल में है हमको मार्गदर्शन देने के लिए, ये चैत्य गुरु है। तो यह भगवान श्री कृष्णा जो चैत्य गुरु परमात्मा कृष्णा या महाप्रभु के विस्तार रूप है, जब आगे है भक्त तो अनुभव कर सकता है कि महाप्रभु या कृष्णा मेरे दिल में है और मेरे मार्गदर्शन तो करता है, उपदेश देता है जिससे हम आगे जा सकता है, जो आगे ये समझ सकता है, देख सकता है। जो आगे है परमात्मा नहीं देखता है दिल में, महाप्रभु को देखता है, कृष्ण को देखता है और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं आगे जाने के लिए। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रभुपद लिखता है कि प्रेरणा देता है एक जीवात्मा को चोरी करने के लिए। लेकिन यह कि क्योंकि ये एक अवस्था है जो वास्तव में तो एकदम सही रास्ते पे ना है, इसलिए थोड़ा सा साया देता है। लेकिन ये तीनों गुण के अंदर है। अगर कोई सोचता मुझे चोरी करना है तो ये गलत है, भगवान ये नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी अनुमति भी देता है, लेकिन इसका फल भी भोगना है, तो फिर ये गलत है। तो लेकिन इसके यहाँ पर भी कहा जाता है कि भगवान जो 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 कुछ कर रहा है ये अद्भुत है, आश्चर्य की बात है। जो भी कृष्ण कर रहा है वो कभी कभी लगता है विरोधाभासी चीज है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो कुछ कृष्ण कर रहा है ये ठीक है। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमको तो क्या हम नहीं समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन कोई कारण है, भगवान की योजना है या इस भौतिक जगत के ये यहाँ पर होता है, चल जाता है। और खुश रहा है कि कर्म फल है, तो जब कृष्ण के पास जाता है पुष्पने आप जाता है तो ये कहा जाता है कि जो पहले आपने किया है इसका समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है और तो कुछ भी भोगना चाहिए आपको। तो अलग अलग उदाहरण दिया है शास्त्र में, जैसे बिल्व मंगल ठाकुर एक हाँ आपको सब आपको तो मालूम है कि शुद्ध वैष्णव है, लेकिन फिर भी तो उनके ये कहानी है और ये वास्तव में ऐसा भी हुआ कि ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण थे और उन्होंने विवाह किया है, शब्द किया था और शास्त्र के अनुसार भी सब कुछ करता था, लेकिन उनके पूर्व कर्म के फल स्वरूप तो बेशक सब उन्होंने भी किया था जो ठीक नहीं था, लेकिन ब्राह्मण थे, भगवान की आराधना भी करते थे और इसके बाद तो भी कहा जाता है कि जब उनका पिताजी भी मर गए तो कार्य करने के बाद तुरंत फिर से ये वैश्य के पास गए जो बिल्कुल अनुचित था, ठीक नहीं था। और इसके बाद भी तो ये चिंतामणी उनका नाम था, ये वैश्य है और तो उन्होंने भी एक बार भी बोल दिया था कि अब क्या कर रहा है, बहुत कष्ट से यहाँ पर आया है। एक रात आए थे और तो मौसम भी खराब था, बहुत पानी गिर पड़ा, और फिर भी नदी पार करके ऊंचे दीवार पार करके उनके पास पहुंच गए। तो चिंतामणि ने बोला क्या कर रहा है, मेरे पास आ रहा है रात के समय और बहुत मुश्किल से, तो लेकिन अब तो भगवान अगर आपके जो जो के प्रयास जो कर रहा है भगवान के प्रति जब करता है ऐसा, तो उनके पास आसानी से पहुंच सकता है। तो इसके बाद वृंदावन की ओर चले गया, फिर से तो आकृष्ट हो गए थे एक ब्राह्मण की स्त्री था। तो आश्चर्य की बात है तो ये कैसा हो सकता है, और फिर से अपने आंखों भी निकाला और वृंदावन की ओर चले गया। भगवान श्री कृष्ण उनकी कृपा से उनका दर्शन भी लेगा, ये आश्चर्य की बात है। और ये कैसा हो सकता है कोई सोच सकता है, लेकिन ये भी लिखा है कि पूर्व जन्म ये एक सन्यासी थे और एक राजा के किला की जो मर गए, और जब ये राजा ने ये उनको जलाना है लेकिन पूरा शरीर जमीन में तो रख दिया, पूरा ये सुंदर वस्त्र के साथ और भूषण के साथ। और इसके बाद ये सुन के ये वहां पर गए और जमीन कूद के ये आभूषण निकाला, तो इससे तो उनका ये तो एकदम गलत था। और इसके फलस्वरूप तो अगले जन्म दुर्गा मंगल ठाकुर के रूप में आया। और ये भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने लिखा है कि एक ये राघवोग भक्त था, लेकिन ये माया की शक्ति इतना तो प्रभावशाली है कि जो आगे भी है कभी कभी नीचे गिर जाता है। तो ये भगवान के जो गतिविधियां और शुद्ध वैष्णव के भी कभी कभी मुश्किल है कि क्या हो रहा है, मुश्किल है। और जैसे यहाँ पर तो पृथ्वी देवी की को वास्तव में कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था दूसरे को कि पृथ्वी देवी तो सब कुछ नहीं देती है जो हमको चाहे, प्रजा बोलते थे, शिकायत करते थे। मार्ग पृथ्वी के पास चले गए थे और उनसे बोला कि पृथ्वी देवी जो हमको चाहे नहीं देती है, इसलिए क्रोधित होकर उनके पीछे पड़ गए और उनको मारने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी। और तो बात करते करते उनको भी उन्होंने भी समझ लिया और इसके बाद तो उपाय भी किया जिससे सब संतुष्ट हो सकता है। तो भगवान अद्भुत है और आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में भी जो उनके बिना है ये अद्भुत है। और अच्छा तरह से समझना ये सिर्फ संभव है जब वैष्णव के पास जाता है और उनसे श्रवण करता है और भजन भी करना है, सेवा करना चाहिए। तो सेवा बनके सेवा बात ही होना चाहिए, और सेवा करते करते गुरु के आदेश के अनुसार और उनकी कृपा से सब कुछ समझ सकता है। जैसे प्रभुपाद भी उन्होंने तो बहुत सुंदर तटपारिया उन्होंने लिखा है, तो उनकी कृपा से हम सब कुछ समझ सकता है। और इसके बाद प्रभुपाद के शिष्य की कृपा से हम और अच्छा तरह से समझ सकता है, क्योंकि कभी कभी तो ये भी परंपरा का है तो शुद्ध वैष्णव भी कुछ बताता है, लेकिन ये भी समझना कभी कभी मुश्किल है क्या कहना चाहता है। इसलिए शुद्ध वैष्णव के जो दुनिष्ठ शिष्य उनसे भी सीखना चाहिए कि क्या कहना चाहता है शुद्ध प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की कृपा से और पूर्वाचार्य की कृपा से और वैष्णव की कृपा से जब विनम्र भाव में रहता है, सेवा करता है, भजन करता है, तो हम आगे जा सकते हैं और सब कुछ समझ सकता है और आगे भी जा सकता है। लेकिन तो हमें इस विनम्र भाव में चाहिए। और आप तो भी कहते नृनारतिना तरोरति सहिष्णुना अमान नामना कीर्तन सदा हरि। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री प्रभुपाद की जय। श्री गोनिताय की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। स्वामी वेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सब यहाँ पुरुषेक साहिब
Thank you.